अरुणिमा इस समय अपने कमरे में थी। वो बस बेचैनी से बालकनी की खिड़की से बाहर जाते हुए देख रही थी, जहां से रजत और मिश्री जा रहे थे। तभी दरवाज़ा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। अरुणिमा रोते हुए आस्तिक के सामने आती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, राजा साहब, इतने बुरे भी मत बनिए। मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे उनके पास जाने दीजिए। वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मैं सारी ज़िंदगी आपके हाथों की कठपुतली बनकर रहूँगी। बस मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए, उन्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। लेकिन आस्तिक के चेहरे पर ना ही भाव बदले थे और ना ही उसके इरादे। अरुणिमा घुटनों के बल आस्तिक के पैरों में गिर जाती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ राजा साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी, आपकी कही हर बात मानूंगी, मुझे अस्पताल जाने से मत रोकिए। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा को उठाने तक की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने तो उबासी लेते हुए कहा, अगर तुम्हारा यही रोना धोना चालू रहेगा तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत की खबर जल्दी मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनका इलाज ही रुकवा दूँ। अगर तुम्हें फिर भी अस्पताल जाना है तो तुम जा सकती हो। अरुणिमा जल्दी से खड़ी होती है और अपने आंसू पूछते हुए कहती, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप बस मेरी माँ का इलाज हो जाने दीजिए, उनका इलाज मत रुकवाइएगा। अरुणिमा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अरुणिमा के ऊपर झुकते हुए कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर बात बिना किसी नखरे के मानो, पर वो तुम ही हो जो हर बार मेरी बात का अनादर करती हो और फिर मुझे तुम्हें सज़ा देना पड़ता है ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आए। अरुणिमा के आंसू तेज़ हो गए थे। आस्तिक की बात सुनकर वो रोते हुए कहती, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं राजा साहब, मैं और मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा है आपका? पहले आपने हमारी कंपनी छीन ली, फिर मिश्री को स्कूल से निकाल दिया और अभी घर का सहारा है आप उसे भी छीनने पर तुले हुए हैं। लेकिन शायद अरुणिमा का सवाल करना आस्तिक को पसंद नहीं आया। उसका चेहरा गुस्से में सख्त हो जाता है और वो एक तेज थप्पड़ अरुणिमा के गाल पर मार देता है, जिससे अरुणिमा के गाल पर तेज दर्द का एहसास होता है। वो डरे हुए चेहरे के साथ आस्तिक को देखती है। आस्तिक उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं जो कर रहा हूँ तुम सब उसके हकदार हो, क्योंकि जो पाप किए हैं उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरुणिमा हैरान रह गई थी, आस्तिक क्या बोले जा रहा था, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरुणिमा ने खुद को आस्तिक की पकड़ से दूर किया और कहा, राजा साहब, आपको मानसिक बीमारी है, आप अपना इलाज करवाइए। अचानक से आस्तिक के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर अलग अलग भाव आने लगे। वो कभी हंसता तो कभी गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहता, तुम में फिर से हिम्मत आ गई है, बस थोड़ी देर के लिए अपने परिवार से क्या मिला, लगता है वो तुम्हें हिम्मत देकर चले गए हैं। कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारी हिम्मत तोड़नी बहुत अच्छी तरह से आती है, लगता है तुम अपनी जगह फिर से भूल गई हो। कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी तुम्हें फिर से तुम्हारी जगह दिखाने में। थोड़ी ही देर में अरुणिमा बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसके सर के ऊपर थे, जो बेड से बंधे हुए थे। वो डरी हुई नज़रों से आस्तिक को देख रही थी, जो अपने हाथों में एक बेल्ट लिए अरुणिमा को ही घूर जा रहा था। अरुणिमा रोते हुए आस्तिक को देखती और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बेल्ट को कमरे के किसी कोने में फेंक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहने लगा, तुम्हारी सज़ा हर बार एक जैसी नहीं होनी चाहिए नरानी साहिबा, क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। एक बार फिर से चीखों का सिलसिला शुरू हो गया था, एक बार फिर से दर्द और यातनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था, एक बार फिर से खुद के लिए मौत मांगने की दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया था। अरुणिमा के लिए आज की रात फिर भारी होने वाली थी, उसके लिए दर्द और यातनाएं फिर से उसके सामने थी और वो एक बार फिर से वही सब बर्दाश्त कर रही थी जो वो नहीं करना चाहती थी। सुबह का वक्त, आस्तिक इस वक्त अपनी माँ के कमरे में था। उसने नीचे ट्राउजर पहना हुआ था, पर अपर बॉडी पर उसके कुछ भी नहीं था। उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था और वो अपने सामने लगी माँ की तस्वीर को देख रहा था। आस्तिक ने अपने चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान रखते हुए अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ, वो डायन इस समय अस्पताल में भर्ती है, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। जब मैंने उसकी बर्बादी की शुरुआत की तब सोचा नहीं था कि उसे पागलखाने भेजकर मैं इतना खुश हो जाऊँगा, लेकिन माँ, उससे ज्यादा मानसिक तनाव का सामना तो मुझे करना पड़ रहा है। मुझे शारदा देवी की हालत को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर एक बढ़ते कदम के साथ मेरे अंदर का शैतान भी जगता जा रहा है। मैं अपने अंदर के मॉन्स्टर को दबाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मॉन्स्टर मुझ पर हावी हो जाता है और फिर मैं पागल हो जाता हूँ और इस पागलपन में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है।
आस्तिक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़े हुए अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। कुछ धुंधले दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं और वो जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहता है, बस 4 महीने, बस सिर्फ इतना ही समय है शारदा देवी के पास। 4 महीने उसे जितने पागलपन के दौरे झेलना है झेल ले, क्योंकि एक बार वो पागल खाने से बाहर आ गई उसके बाद मैं उसे वही दर्द महसूस करवाऊंगी जो आपने महसूस किया था। मुझे आज भी याद है माँ, जब तुम हम लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से बात नहीं करती थी। उस कमीने के जाने के बाद धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई थी। तुम्हें कैसे दौरे पड़ते थे ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस छोटी सी झुकी झोपड़ी जैसे घर में तुम्हें कमरे में बैठी रहती थी और सिर्फ अपने बालों को नोचते हुए रोया करती थी। मैं सिर्फ 13 साल का ही तो था और बाकी सब तो और छोटे थे। घर का बड़ा होने के नाते मुझे ये सब कुछ संभालना था और साथ में आपको भी संभालना था, इसलिए मैंने पड़ोसी के घर में नौकर का काम कर लिया। वहां से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे मैं उनसे हमारी दाल रोटी के साथ साथ तुम्हारी दवाइयों का इंतजाम करता था।